ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है 19वें एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
19वें एशियाई खेल जो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांगझो चीन में आयोजित किए जा रहे हैं, इस प्रतियोगिता में हम सभी जानते हैं कि जो एशियाई खेल हैं, एशिया भर से तमाम खिलाड़ी जुड़ते हैं और अलग अलग खेलों की प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स में अपने प्रदर्शन को रखते हैं। भारत भी बड़े उत्साह के साथ अपने सबसे बड़े दल के साथ इन एशियाई खेलों में हिस्सा लेते हुए लगातार अपने पदकों की संख्या को बढ़ाता जा रहा है और उम्मीद रखते हैं कि जब अंतिम दिन 8 अक्टूबर होगा तब तक हमारी जो मेडल टैली है वो काफी हद तक बेहतर होगी पिछले एशियाई खेलों के मुकाबले। हम कार्यक्रम में इन एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए जोड़ रहे हैं खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी को। मोना जी, स्वागत है।
धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
इस बार ये अपेक्षा रख रहे हैं कि जो हमने सबसे बड़ा दल एशियाई खेलों में भारत का भेजा है और जिसका लगातार प्रदर्शन अभी जारी है, 60 से ज्यादा पदक जीत चुके हैं, इस मेडल टैली को और ज्यादा बढ़ाया जाए। आपको क्या लगता है कि अब तक का जो प्रदर्शन रहा है, क्या भारत का वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बन सकता है मेडल के लिहाज से और प्रदर्शन के लिहाज से, और आगे बचे जो खेल हैं उनको लेकर भी हम क्या उम्मीद रख सकते हैं?
अब तक का जो प्रदर्शन ग्राफ रहा है, 60 से ऊपर मेडल अभी हो चुके हैं और अभी काफी दिन बाकी हैं खत्म होने में, 3-4 दिन है, तो मुझे लगता है कि 70 पिछली बार जीते थे उससे ज्यादा 80-90, और हमारा तो जो मोटो ही रहा था कि अब की बार 100 पार, तो उस दिशा में बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत से अगर हम देखें तो पहले निशानेबाजों ने 22 पदक जीते और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उनके नाम रहा। एथलेटिक्स शुरू हुआ तब से एथलेटिक्स में इतने सारे पदक आए हैं और अभी सबकी नजरें नीरज चोपड़ा के इवेंट पर लगी हुई है जो कल होना है। हॉकी की हम बात करें तो हॉकी में लग रहा है कि 2 गोल्ड मेडल आते नजर आ रहे हैं। बैडमिंटन के इंडिविजुअल इवेंट्स अभी बाकी हैं, उसमें पदक आएंगे। रेसलिंग अभी शुरू ही नहीं हुआ है और रेसलिंग में हमें बहुत सारे पदक मिलने की उम्मीद है। तीरंदाजी में हमारे 8 तीरंदाज अभी उनके पदक दांव पर लगे हुए हैं और एक कंपाउंड वर्ग में तो स्वर्ण और रजत दोनों भारत के पक्के हो चुके हैं, तो अभी काफी सारे मेडल आने बाकी हैं।
आपने शूटिंग की बात की तो शुरुआत हम शूटिंग से ही करते हैं। हम देख रहे हैं कि ओलंपिक्स हो या एशियाई खेल हो, हमारी शूटिंग के डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा हमें अपेक्षाएं होती हैं और इसका कारण ये भी है कि शूटिंग को लेकर हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हमें निराश नहीं किया है और समय समय पर पदक जीतकर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। तो निशानेबाजी का प्रदर्शन इस बार कैसा रहा, किस तरह से जो हमारे निशानेबाज हैं, जो अनुभवी हैं, उनके साथ साथ जो युवा निशानेबाज हैं, उन्होंने अपने प्रदर्शन को किस तरह से रखा?
बिल्कुल, निशानेबाजों के प्रदर्शन की जितनी तारीफ की जाए कम है और अनुभवी निशानेबाजों के साथ युवाओं का प्रदर्शन भी बहुत बेहतरीन रहा। आप देखिए कि एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में ईशा सिंह और पलक गुलिया टॉप 2 फिनिश होना बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा मनु भाकर टीम स्पर्धा में उन्होंने पदक जीता, हालांकि व्यक्तिगत वर्ग में वो चूक गई, लेकिन आप ऐश्वर्य प्रताप तोमर हो या अर्जुन नरुका हो, जितने भी निशानेबाज हमारे ट्रैप शूटिंग तक में हमने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो मुझे लगता है कि जो पिछले 2 ओलंपिक से हम खाली हाथ लौटे थे, टोक्यो से और रियो से, और उससे पहले लगभग हर ओलंपिक में हमारे पास पदक आता रहा है, अभिनव बिंद्रा से जो शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो एक मन में मलाल सा था निशानेबाजों के। और इस बार एशियन गेम्स में चुनौती काफी कठिन होती है। चाइना के जो निशानेबाज है वो पावर हाउस माना जाता है चाइना, और चाइनीज निशानेबाजों को उनके ही देश में हराकर हम लोगों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। और 2-3 इवेंट ऐसे थे कि जिसमें हम 4थे स्थान पर रह गए, पदक से चूक गए, वरना ये टैली और ऊपर तक जा सकती थी। तो एक वो जो बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है चाइना को लेकर, वो निशानेबाजों ने तोड़ा है। और एक एवरेज एज देखिए आप, 17, 18, 19, 20 साल के निशानेबाज हैं, चाहे वो सौरभ जोध हो, चाहे वो पलक गुलिया हो, चाहे वो ईशा सिंह हो, एवरेज एज इनकी बहुत कम है सभी की, यानी भविष्य बहुत उज्ज्वल लगता है निशानेबाजी का।
आपने बात की कि निशानेबाजी का भविष्य उज्जवल है, लेकिन हम एथलेटिक्स में भी भारत का भविष्य उज्जवल देख रहे हैं। आपने देखा कि जब से नीरज चोपड़ा का ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक हमें मिला है तो एथलेटिक्स में एक जोश सा भर गया है, और इसका नतीजा हम एशियाई खेलों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से भारत ने अपने एथलेटिक्स का प्रदर्शन किया। और जो आठवां दिन रहा उसमें जो 15 पदक हमने जीते हैं उसमें एथलेटिक्स के कमाल की बदौलत हमने ये कारनामा किया। एथलेटिक्स का जो प्रदर्शन रहा है वो कितना अहम है, जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन भारत का हो रहा है, और अभी भी आपने बताया कि बहुत सारी प्रतियोगिताएं अभी हैं जिसमें भारत को पदक जीतने की उम्मीद है, और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार एशियाई खेलों में भारत एथलेटिक्स से कुछ बेहतर करके दिखाए, जिससे कि आने वाले समय में हम दूसरे चैंपियनशिप्स और दूसरे जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं उसके लिए तैयार रहें। तो एथलेटिक्स को लेकर जो अभी तक का प्रदर्शन रहा उस पर आपकी टिप्पणी।
जो भी मल्टी स्पोर्ट इवेंट होते हैं, चाहे वो एशियाई खेल हो, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे वो ओलंपिक हो, उन सबकी जिसको कहा जाए जान है वो एथलेटिक्स होता है। ट्रैक और फील्ड पर सभी की नजरें लगी होती है, और बहुत हद तक इसका श्रेय नीरज चोपड़ा को जाता है जिन्होंने जूनियर से सीनियर लेवल पे इतना अच्छा प्रदर्शन करके ये उम्मीद हर भारतीय के मन में जगाई कि हम भी वर्ल्ड बीटर्स बन सकते हैं, हम भी दुनिया में किसी को भी हरा सकते हैं। तो आप देखिए अविनाश साबले हो 3000 मीटर स्टीपल चेस में जब वो दौड़ रहे थे तो जो दूसरा उनके पीछे था वो इतना पीछे था कि लग रहा था वो पैदल चल के भी जाएंगे तो गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। उसके अलावा तेजिंदर पाल सिंह तूर को देखिए, शॉटपुट में जिस तरीके से उन्होंने थ्रो फेंका है, और पहले 5 थ्रो में वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उनका इतना हाई था कि वो आखिरी थ्रो उन्होंने 20.86 मीटर का फेंका और गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 40 साल की सीमा पुनिया को देखिए कि इस उम्र में भी एथलेटिक्स में जाकर वो एशियाई खेलों जैसी टफ कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रही है। और अभी शैली सिंह भले ही चूक गई हो व्यक्तिगत पदक से, लेकिन एनजी सोजन ने उसमें पदक जीता, सिल्वर मेडल उनको मिला, ये बहुत बड़ी बात है। पारुल चौधरी को देखिए स्टीपल चेस में, प्रीति को 2-3 फिनिश इंडिया को मिला है उसमें, ये बहुत बड़ी बात। इसके अलावा 4x400 मीटर दोनों रिले टीम में जो है पुरुष महिला वो स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार है। तेजस्विन शंकर हैं पदक के प्रबल दावेदार हैं, डेकाथलन में अभी टॉप 1-2 में चल रहे हैं, तो अभी उनका फाइनल होना बाकी है। नीरज चोपड़ा का फाइनल होना बाकी है, तो अभी पदक बहुत सारे एथलेटिक्स में भारत को मिलने की हमें उम्मीद लग रही है।
मैं मोना जी आपको तीसरे दिन पर ले जाना चाहूंगा, जिसने हमें 1982 के भारत में आयोजित हुए एशियाई खेलों की याद दिला दी थी, घुड़सवारी में भारत का जो स्वर्ण पदक आया था। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो घुड़सवारी जैसी स्पर्धाएं हैं उसमें भारत किस तरह से बेहतर कर सकता है, क्योंकि हमने स्वर्ण पदक के साथ और पदक भी इसमें जीते, और घुड़सवारी के साथ साथ जैसे तलवारबाजी हुई, इस तरह के और खेल हुए जिसमें शायद भारत परंपरागत तौर से जुड़ा हुआ है, और इसमें अगर बेहतर प्रदर्शन भारत का देखने को मिले तो आने वाले समय में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत इन स्पर्धाओं में भी पदक जीत सकता है।
घुड़सवारी की शुरुआत तो पिछली बार ही हो गई थी जब फवाद मिर्जा ने सिल्वर मेडल जीता था, और इस बार इंडिविजुअल ड्रेसेज टीम ने ये जिसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से एक मेडल आना, पदक की उम्मीद जरूर की जा रही थी लेकिन स्वर्ण पदक मिलेगा ये तो सोने पे सुहागा जैसा हो गया। और व्यक्तिगत वर्ग में भी हम पहले दिन आगे चल रहे थे लेकिन बाद में क्रॉस कंट्री और इवेंट जंपिंग में हम थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि इसमें पोटेंशियल है। और सिर्फ घुड़सवारी ही नहीं, तलवारबाजी में आप देखिए भवानी देवी जब से ओलंपिक खेलकर आई है, पहली महिला थी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में थोड़ा निराशाजनक ढंग से वो हारकर बाहर हो गई, लेकिन यहाँ पर भी उम्मीद है कि अगर इनको एक्सप्लोर किया जाए, ग्रूम किया जाए खिलाड़ियों को, तो हम यहाँ पदक जीत सकते हैं। सेपक टकरा देखिए कितने सालों बाद हमने उसमें पदक जीता, रोलर स्केटिंग जिसका ना तो कोई भारत में इतिहास है ना कोई बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, रोलर स्केटिंग में मैन वुमेन दोनों टीमों ने पदक जीता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां हमें उम्मीद नहीं थी वहां से हमें पदक मिल रहे हैं।
टेनिस और स्क्वैश जैसे जो खेल हैं वो बहुत प्रचलित खेल हैं, और ऐसे में भारत का सातवें दिन जो स्वर्ण पदक का प्रदर्शन रहा दोनों खेलों में वो बड़ा काबिले तारीफ माना गया। तो इन खेलों में भारत के भविष्य को कैसे देखा जा रहा है, और इन एशियाई खेलों में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है उसको आप कैसे आंकती हैं?
स्क्वैश में जिस तरह से खासतौर पर फाइनल में पाकिस्तान को हराकर हमने जो मुकाबला जीता वहां तारीफ करनी पड़ेगी। अभय सिंह जैसे युवा खिलाड़ी, अभी तक सौरभ घोषाल, जोशना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल, इन सबके नाम हम सुनते आए थे, लेकिन अब युवा खिलाड़ी इसमें आगे आ रहे हैं, और न सिर्फ आगे आ रहे हैं, पाकिस्तान पारंपरिक रूप से बहुत अच्छी टीम है स्क्वैश की, उसको इतने संघर्षपूर्ण और तनावपूर्ण मुकाबले में हराकर स्वर्ण पदक जीतने से ये साबित होता है कि पोटेंशियल भी है और पॉसिबिलिटीज भी है। दूसरा, टेनिस की आपने बात की तो व्यक्तिगत वर्ग में भले ही निराशा हमें हाथ लगी हो, लेकिन रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने जिस तरीके से मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाला वो बहुत ही कमाल का था। और रोहन बोपन्ना तो हाल ही में डेविस कप को अलविदा कह चुके हैं और शायद एशियन गेम्स भी ये उनका आखिरी है। 42 साल की उम्र में जिस तरीके से वो अपने से कम उम्र के आधी उम्र के खिलाड़ियों को चुनौती दे रहे थे और उन्हें हरा रहे थे, वो देखकर जरूर युवाओं को जो टेनिस अपनाना चाहेंगे भविष्य में उनको प्रेरणा मिली होगी।
बैडमिंटन में भी हमने देखा कि पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, इसके साथ ही सिंधु भी लगातार अपने मुकाबलों में आगे बढ़ रही हैं और एचएस प्रणय भी इस प्रतिस्पर्धा में बढ़ रहे हैं।
जी, बैडमिंटन में बिल्कुल भारतीय पुरुष टीम जो थॉमस कप विजेता भी रह चुकी है और स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी और लग रहा था कि स्वर्ण पदक हमारी झोली में आने ही वाला है, लेकिन एचएस प्रणय अनफिट हो गए, उनकी कमर में इंजरी था और वो टीम इवेंट नहीं खेल पाए। लक्ष्य सेन ने अपना मुकाबला जीता, अगला एचएस प्रणय को जहां खेलना चाहिए था सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने अपना मुकाबला जीता, लेकिन एचएस प्रणय खेल नहीं सके, उनकी जगह मिथुन मंजुनाथ को खेलना पड़ा और भारत को दो मुकाबलों में आगे बढ़ने के बाद तीन मुकाबले गंवाने के कारण वो मैच हार गए और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहां जरूर थोड़ी निराशा हाथ लगी, लेकिन ये भी एक उपलब्धि है कि आप इस लेवल पे जाके जो आपका मेन प्लेयर है वो इंजर्ड हो गया है, उसकी जगह आप खेल रहे हैं। रोहन कपूर बुखार की चपेट में थे, तनिषा क्रिस्टो को भी कुछ समस्या थी, तो इस तरीके से इन चीजों से उभरते हुए भी भारतीय टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया और इंडिविजुअल मुकाबले शुरू हो चुके हैं, किदांबी श्रीकांत अपना मैच जीत चुके हैं, एचएस प्रणय ने वापसी कर ली है इंडिविजुअल, वो खेलेंगे, पीवी सिंधु है दो बार की ओलंपिक चैंपियन है और स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार है, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि बैडमिंटन से इंडिविजुअल वर्ग में भारत को मेडल आने चाहिए।
जिस तरह से भारत ने हॉकी के समय में अपना दबदबा बनाया था, एक और इवेंट ये समझा जा रहा है कि स्वर्ण पदक भारत का पक्का है वो है क्रिकेट, और इस बार एशियाई खेलों में हमने ये देखा भी है कि महिला क्रिकेट टीम ने जिस तरह से श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता और अब आज ही नेपाल से भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जीती है। क्रिकेट का प्रदर्शन निश्चित रूप से तो हम सभी जानते हैं कि बेहतर है भारत का, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से एशियाई खेलों में जो क्रिकेट का शामिल होना और भारत का प्रदर्शन रहा है, भारत ने अपने स्वर्ण पदकों को तो सिक्योर कर लिया है।
जिस लेवल पे भारतीय क्रिकेट है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा एक्सपोजर है, जो हमारे खिलाड़ियों का स्तर है, उसको देखते हुए लगता है कि भारत के लिए एशियाई खेलों में चुनौती ही नहीं है, लेकिन फिर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अगर आज का मैच आपने देखा हो, नेपाल ने भारतीय टीम को टक्कर दी थी काफी अच्छी और अगर कुछ रन कम होते तो शायद हम उलटफेर का शिकार भी हो सकते थे। एशियाई स्तर पे किसने सोचा होगा कि चीन में जाकर भारतीय टीम क्रिकेट खेलेगी और एक अच्छा मैच पहला ही देखने को मिलेगा, जैसे कि क्वार्टर फाइनल तक भारत को बाय मिला था और सीधे क्वार्टर फाइनल में खेल रही है भारतीय टीम, और यहां पर माना यही जा रहा है कि ये एक स्वर्ण पदक सुरक्षित है भारत का। जैसे पहले कभी कबड्डी में हम मानते थे कि हमारा गोल्ड तो पक्का है ही, क्योंकि महिला टीम ने दिखा ही दिया है प्रदर्शन जिस तरीके से उनका रहा, कि दो स्वर्ण पदक ये श्योर शॉट माने जा रहे हैं भारत के।
और हॉकी को लेकर भी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि महिला क्रिकेट टीम लगातार आगे बढ़ रही है, तो क्या कुछ पदक की उम्मीद हम रख सकते हैं?
देखिए, हॉकी में सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि अगर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो सीधे पेरिस ओलंपिक का टिकट कटेगा, और जो पहले ग्रुप चरण में दोनों भारतीय महिला टीम पुरुष टीम दोनों टॉप पर रही हैं, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो 5 मैचों में 58 गोल किए हैं और सिर्फ 5 गोल गंवाए हैं, जिस टीम के खिलाफ भी खेली है जबरदस्त प्रदर्शन, एक जापान को छोड़कर किसी भी टीम से चुनौती भारत को मिल नहीं सकी है, तो हौसले बिल्कुल बुलंद है। हरमनप्रीत और मनदीप दोनों जबरदस्त फॉर्म में है, और अगर हम महिला टीम की बात करें तो महिला टीम का भी अपराजय अभियान रहा है, हालांकि एक मैच में उसने ड्रॉ खेला है, लेकिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, खासतौर पर गोलकीपर सविता पूनिया हो जो कप्तान भी है, या फिर संगीता कुमारी जैसे नए खिलाड़ी हो, या दीप ग्रेस का जैसे पुराने अनुभवी खिलाड़ी, सभी ने टीम की जीत में योगदान दिया है। और अब चाइना से खेलना है सेमीफाइनल और उधर पुरुष टीम को कोरिया से खेलना है, तो उम्मीद यही करते हैं कि ये सेमीफाइनल की चुनौती लगभग आसान होगी और फाइनल मुकाबले में दोनों टीमें पहुंचेंगी।
जैसा कि मोना जी आपने शुरुआत में ही कहा था कि 2018 में जो 70 पदक हमने जीते उसको तो हम पार कर ही लें, जो बची हुई स्पर्धाएं हैं उसमें अपने प्रदर्शन को बेहतर करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पदक जीतकर इस बार के एशियाई खेलों में एक रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश करें। हमारी बहुत सी शुभकामनाएं भारतीय दल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे कार्यक्रम में जुड़ी।
शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे 19वें एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।